नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ ने उभरते भारत और विविधता में एकता की भावना को दर्शाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शक्ति असंतुलन को रोकने के लिए निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आह्वान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नागपुर हिंसा पूर्व नियोजित लगती है, नागरिकों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गजा पट्टी में इसराइल के लगातार हवाई हमलों में कम से कम 200 लोग मारे गए, संघर्ष विराम वार्ता विफल। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद पृथ्वी के लिए वापसी यात्रा शुरू की। और कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमें आज इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में अपने ग्रुप मैच खेलेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। महाकुंभ पर आज लोकसभा में बयान देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विविधता में एकता की इस विशेषता को समृद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहे।
जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ खतरे में हैं।
महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत की क्षमता के बारे में कुछ लोगों में संदेह को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने देशवासियों को बहुत प्रेरणा दी है, क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं लोगों ने किया था। और अब संसद में इस समय हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भूपेंद्र, आज प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर संसद में वक्तव्य दिया है, क्या प्रमुख बातें रहीं प्रधानमंत्री के वक्तव्य की, और उसके बाद जो विपक्ष का जो हंगामा देखने को मिला, उसकी क्या वजह रही?
जी विशाल, इस समय राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा चल रही है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर बजट और विनियोग विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता व्यक्त की और राज्य के बजट में किए गए कई वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डाला। वहीं लोकसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे के कारण अभी कुछ ही देर पहले सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के भव्य आयोजन और सफलता पर एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इस ऐतिहासिक आयोजन ने देश में विविधता में एकता की भावना को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी के प्रयासों को भी सराहा। श्री मोदी के बयान के पूरा होने के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। इसके कारण सदन को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब सदन दोपहर 1 बजे के बाद दोबारा बैठा तो विपक्षी सदस्यों ने फिर से हंगामा किया और हंगामे के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय से संबंधित चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में मजबूत रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत अन्य देशों को रेलवे उपकरण और कोच भी निर्यात कर रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। विशाल, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दों पर संसद सदस्यों ने अपनी बात रखी और सरकार की तरफ से संबंधित मंत्रियों ने इसके जवाब दिए, और लोकसभा में डीएमके सांसदों ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के मुद्दे को लेकर सदन से वॉकआउट किया है। जी विशाल
जी, भूपेंद्र, धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को मान्यता दिए जाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था की अनुपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। श्री जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का उल्लेख करते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख किया।
द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इलीगल presence occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA.
अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग में निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन में सुश्री गबार्ड ने पिछले कुछ दिनों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त वक्तव्य से उत्पन्न गति को आगे बढ़ाना बहुत ही रचनात्मक रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में नागपुर के महाल इलाके में कल शाम दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। धार्मिक प्रतीकों की कथित तौर पर तोड़फोड़ की अफवाहों के बाद दो समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव के कारण पथराव और वाहनों में आगजनी की घटनाएं हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब स्थिति नियंत्रण में है।
नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंगल ने मध्य नागपुर के हिंसा प्रभावित महाल क्षेत्र सहित शहर पुलिस क्षेत्राधिकार के तहत नागपुर के 11 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी आज सुबह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पथराव के दौरान करीब 33 पुलिस कर्मी घायल हुए, जबकि 5 लोग भी घायल हुए हैं। शहर के मध्य क्षेत्र में करीब 45 वाहन जला दिए गए। नागपुर पुलिस ने इस घटना में 48 लोगों को हिरासत में लिया है। बावनकुले ने कहा कि नागपुर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की है। नागपुर की घटना के बारे में विधानसभा में उन्होंने कहा कि नागपुर में हुई हिंसा पूर्व नियोजित प्रतीत होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के संबंध में 5 मामले दर्ज किए गए हैं और 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में राज्य रिजर्व पुलिस बल की 5 बटालियन तैनात की गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नागपुर हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी। आज संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति से बेहतर तरीके से निपट रही है। थाने से शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हिंसा की घटना के पीछे विपक्ष की साजिश है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। उन पर 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। गजा पट्टी पर इसराइल के ताजा हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये हमला इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता के जनवरी में विफल होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इसराइली सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसी ने हमलों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस हमले में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम समझौते पर कोई सहमति नहीं बन पाने की वजह से उन्होंने इन हमलों का आदेश दिया। दूसरी ओर हमास ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करके बंधकों की जान खतरे में डाली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स आज रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्षयान दोनों को लेकर कल सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर उतरेगा। नासा की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ड्रैगन अंतरिक्षयान को पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार किया जा रहा है। यान के लिए स्थितियां भी अनुकूल है। संभावना है कि ये यान दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरेगा। इसके अलावा ड्रैगन अंतरिक्षयान नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को भी वापस लेकर आएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विधायकों को प्रभावी जनप्रतिनिधि बनने के लिए उन्हें संविधान के प्रावधानों के साथ साथ सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का व्यापक जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों को सदन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और गतिरोध से बचना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि असहमति को सार्थक संवाद के माध्यम से गरिमापूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय और विधायी विभाग के सचिवों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आधार पहचान संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने पर चर्चा होगी। रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे अच्छी वित्तीय स्थिति में है और सरकार इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। श्री वैष्णव ने रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए आज ये बात कही। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर इस योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट आवंटन 86,000 करोड़ रुपए पर स्थिर बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि इस योजना का विस्तार करने और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए। और अब खेल खबरें। कबड्डी विश्व कप में आज भारतीय पुरुष और महिला टीमें इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में अपने अपने ग्रुप मैच खेलेंगी। भारतीय समयानुसार आज शाम 5:30 बजे महिला टीम का मुकाबला ग्रुप डी में वेल्स से होगा, जबकि ग्रुप बी में पुरुष टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से रात 10:30 बजे होगा। मौसम विज्ञान ने आज उत्तरी आंतरिक ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने तटीय गुजरात, कोंकण, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के स्थानों पर पूरे दिन गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में गरज के साथ बारिश होने और बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ ने उभरते भारत और विविधता में एकता की भावना को दर्शाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शक्ति असंतुलन को रोकने के लिए निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आह्वान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नागपुर हिंसा पूर्व नियोजित प्रतीत होती है, नागरिकों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गाजा पट्टी में इसराइल के लगातार हवाई हमलों में कम 200 लोग मारे गए, संघर्ष विराम वार्ता विफल। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद पृथ्वी के लिए वापसी यात्रा शुरू की और कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमें आज इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में अपने ग्रुप मैच खेलेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।